सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। पहले हमने सेल वॉल को डिस्कस किया, तब हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। पहले तो हमें जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके डिफरेंट नाम पता होने चाहिए। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोलेमा। तो अगर इनमें से कोई भी नाम आ जाता है तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन ही है। जैसे कि हमने बोला था कि जो सेल वॉल है वो क्या है, एक डेड बाउंड्री है, नॉन लिविंग बाउंड्री है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, हमारे पास एक लिविंग बाउंड्री होती है। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है, बैक्टीरियाज में, आर्चिया में, सेल मेम्ब्रेन है वो सब में कॉमन है। लेकिन सेल वॉल जो है वो एनिमल में नहीं होती थी, जो हमने डिस्कस किया था। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो सब में प्रेजेंट है, जितने भी सेल्स हैं हमारे पास। अब हम इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को देखें तो इसमें जो मेनली हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती हैं लिपिड्स और एक होती हैं प्रोटीन्स। लिपिड्स का जो परसेंटेज हमारे पास होती है 20-40%, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं 60-80%। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स भी आके अटैच होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स भी, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो स्मॉल होती है। यानी कि जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं उनके मुकाबले में बहुत कम क्वांटिटी है कार्बोहाइड्रेट्स की। अच्छा, अब जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, इसको लेके बहुत से मॉडल्स हिस्ट्री में हमारे पास इन लोगों ने जो है, साइंटिस्ट ने जो है पेश किए। लेकिन इनमें से जो सबसे एक्सेप्टेबल है, जो हम लोग टुडे उसको मानते हैं, वो है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पहले जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो लिपिड बायलेयर है उसके वो दरमियान में सैंडविच है, और उसके ऊपर और नीचे प्रोटीन की लेयर्स हैं। यानी कि दो प्रोटीन लेयर्स हैं और उनके दरमियान में लिपिड बायलेयर जो है वो सैंडविच हुई है। ये अर्लियर एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह आया तो हमने एग्जामिन किया तो हमें पता चला कि ये ऐसी बात नहीं है। बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं लिपिड्स में। यानी कि लिपिड्स की जो है हमारे पास दो लेयर्स हैं और प्रोटीन्स उनमें एम्बेडेड हैं, कहीं पे वो फ्लोट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और यही मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है हमारे पास। ठीक है, अब बेसिकली जो हमारे पास जो लिपिड की दो लेयर्स होती हैं, लिपिड बाई लेयर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि लिपिड की दो लेयर्स होती हैं हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में, वो क्या होती हैं, एसिमेट्रिकल होती हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि वो दोनों जो हैं अनइक्वल होती हैं, आइडेंटिकल नहीं होती। यानी अगर एक लेयर में लिपिड ज़्यादा हैं तो दूसरी में कम हो सकते हैं, या दोनों में जो है कोलेस्ट्रॉल और इन चीज़ों का फ़र्क आ सकता है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि दोनों लेयर्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, वो क्या होती हैं, एसिमेट्रिकल होती हैं, यानी कि नॉन आइडेंटिकल। इसके बाद अगर हम फ्लूइडिटी की बात करें तो जो लिपिड्स हैं वो मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जितनी हमारे पास लिपिड कंटेंट होगा, जितना हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होगा, उतनी ज़्यादा मेम्ब्रेन फ्लूइड होगी, यानी इतनी ज़्यादा वो फ्लोट कर सकती है। इसमें प्रोटीन्स का रोल नहीं होता, बेसिकली फ्लूइडिटी में सिर्फ हम लिपिड को कंसिडर करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास हम बात करेंगे डिफरेंट इसके जो प्रोटीन्स हैं उनकी, लिपिड्स की और ग्लाइकोलिपिड्स की, ग्लाइकोप्रोटीन्स की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्रोटीन्स के रोल की। अब जैसे कि हमने पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में डिस्कस किया कि जो प्रोटीन्स हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं लिपिड बायलेयर में। अब जो फ्लोट कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो ग्लोब्यूलर फॉर्म में है। मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन्स की शीट्स हैं और वो स्टिक हुई हुई हैं लिपिड बायलेयर में, ऐसा कुछ नहीं है। बॉल्स की फॉर्म है, ग्लोब्स की फॉर्म है, प्रोटीन्स इस फॉर्म में है लिपिड बायलेयर में। अब फर्दर हमारे पास प्रोटीन की इसमें दो टाइप्स आ रही हैं, एक है हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक होता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, अब इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स हैं, वो ऐसे प्रोटीन्स हैं जो लिपिड बायलेयर के दोनों तरफ से एक्सटेंड कर रहे हैं। यानी कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल एक प्रोटीन है उसके दो एंड्स होते हैं, एक एंड एक साइड से एक्सटेंड कर रहा है, दूसरा एंड दूसरे साइड से एक्सटेंड कर रहा है, एम्बेडेड नहीं है वो। जबकि जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं वो क्या होते हैं, उनकी एक साइड तो बाहर वाली तरफ होती है, यानी एक साइड तो एक्सटेंड हो रही है लिपिड बायलेयर से, लेकिन जो दूसरी साइड है वो एम्बेडेड होती है लिपिड बायलेयर के अंदर, वो हमें नज़र नहीं आती, सिर्फ हमें उनका एक एंड नज़र आ रहा होता है। तो ऐसे प्रोटीन्स को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। इसके बाद हमारे पास हम बात करेंगे कि ग्लाइकोलिपिड्स और जो ग्लाइको प्रोटीन्स हैं वो कब बनते हैं। वो ऐसे बनते हैं कि जब लिपिड या प्रोटीन पर आकर कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अटैच हो जाता है, या किसी और फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट आके अटैच हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि अब वो जो है कॉन्जुकेटेड एक मॉलिक्यूल बन गया, उसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइको प्रोटीन। बेसिकली जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसकी डाइवर्सिटी किस लिए होती है, यानी कि वो डिफरेंट फंक्शंस क्यों परफॉर्म कर रही होती है, वो बेसिकली लिपिड्स की वजह से होती है, प्रोटीन्स की वजह से होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिपिड्स की एग्जाम्पल दूँ तो जो आर्चिया की हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें जो लिपिड्स होते हैं उनमें कार्बन चेन्स होती हैं, वो ब्रांच्ड होती हैं, और जो बैक्टीरिया होती हैं उनमें जो कार्बन चेंज होती हैं उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो क्या होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। तो इस वजह से इनमें जो है फंक्शनल डाइवर्सिटी पैदा होती है, ये मेम्ब्रेन लिपिड्स की वजह से, प्रोटीन्स की वजह से भी हो सकती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने सिर्फ आपको लिपिड्स के एग्जाम्पल दिए। इसके बाद हमारे पास लिपिड्स का रोल आ जाता है। लिपिड्स क्या करते हैं, वो मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमिएबल बनाते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मेम्ब्रेन से सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या ऐसे मॉलिक्यूल जो लिपिड में सिर्फ सॉल्युबल हो सकते हैं वो सिर्फ लिपिड्स के थ्रू पास कर सकते हैं। इसके बाद मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या करते हैं, दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, वो किससे पास होता है, वो प्रोटीन से पास होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर वक्त बस पास ही होते रहेंगे, चाहे सेल में कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर सेल में कंसंट्रेशन फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, ग्लूकोज की अगर कंसंट्रेशन सेल में ठीक है, कम नहीं है, तो प्रोटीन्स ग्लूकोज को अलाउ नहीं करेंगे कि फर्दर वो इंटर हो। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज कंसेंट्रेशन कम हो गया तो तब वो प्रोटीन से पास होगी, सेल के जो सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन है उनसे पास होगी और वो साइटोप्लाज्म में इंटर होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज क्योंकि हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, इसलिए हम जो है वो सिर्फ प्रोटीन के थ्रू पास हो सकता है, नॉट थ्रू लिपिड। इसके बाद जो है हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आ जाती हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे पास दे रिसीव द स्टिमुलाई एंड दे रेगुलेट द सेल रिस्पॉन्स, यानी कि डिफरेंट अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट से जो स्टिमुलाई रिसीव होते हैं, यानी कि अगर कोई सेल को डेंजर फील हो रहा है या कुछ इस तरह की टाइप की चीज़ हो रही है, तो वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स का काम है उनको रेगुलेट करना, सेल की जो अंदर अब कोई अगर डिफरेंट कंपाउंड किसी ने सिंथेसाइज होना है, अगर सेल कोई स्टिमुलाई रिसीव हुआ है, तो वो सारा काम कौन कंट्रोल करता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं। जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन जिनको हम इंटरनल प्रोटीन्स कहते हैं, या इनका एक और नाम है परमिएजिस। ठीक है, वो क्या करते हैं, परमिएजिस का क्या मतलब है, परमिशन करना, परमिशन देना या किसी चीज़ को फ्लो करने के लिए परमिशन अलाउ करना। ठीक है, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का क्या काम है, वो क्या करते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयनिक मटीरियल्स। डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाती है चीज़। ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है दरमियान में और मटेरियल्स का फ्लो होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है कि एक चीज़ को हमने फॉर एग्जांपल कोई न्यूट्रिएंट है, हमने अगर उसको एक साइड से दूसरी साइड पर पहुँचाना है, तो वो किसका काम है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का काम है। यानी कि अगर सेल से हमने किसी चीज़ को नहीं बल्कि सेल के अंदर हमने किसी चीज़ को इंटर करना है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, तो वो किसके थ्रू इंटर होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के थ्रू इंटर होगा। अब ये आपने इनको डिफ्रेंशिएट करना है कि याद जहन में रखना है कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स का अलग फंक्शन है और इंट्रिंसिक जो प्रोटीन्स हैं उनका अलग फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट स्टिमुलाई रिसीव करते हैं फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, लाइक हार्मोन रिसेप्टर साइट। हार्मोन रिसेप्टर साइट जो है बेसिकली हमें रिक्वायर्ड होती है सेकेंडरी हार्मोन्स के लिए। सेकेंडरी हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे पास लिपिड सॉल्युबल नहीं होते, यानी अगर कोई चीज़ लिपिड सॉल्युबल है वो तो डायरेक्ट लिपिड्स को क्रॉस करके सेल के अंदर इंटर हो जाएगी। लेकिन अगर हार्मोन्स फॉर एग्जांपल हमने अगर वो प्रोटीन सॉल्युबल हैं, तो वो पहले आके जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है या ग्लाइकोप्रोटीन्स है उन पे जाकर अटैच होंगे, और उसके बाद जो अंदर सेल में एक सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होता है जिसके ज़रिए जो है फिर सेल अपना हार्मोन के मुताबिक अपना रिस्पांस जो है वो इनिशिएट करता है। इसके अलावा हमारे पास रिकग्निशन ऑफ एंटीजन है। ठीक है, जब एंटीजन हमारे पास आके बाइंड हो जाता है सेल पे, तो उसके मुताबिक भी सेल का जो रिस्पांस है वो भी रेगुलेट करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसके बाद जो हमारे पास डिफरेंट मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका एक और फंक्शन है कि वो एंडोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में ये होता है कि सेल जो है चंक्स ऑफ सॉलिड मटीरियल जो है वो अपने अंदर जो है लेता है। ठीक है, ईटिंग ऑफ द सेल बेसिकली हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट से सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं सेल के अंदर इंटर हो रहे हैं। और पिनोसाइटोसिस होता है ड्रिंकिंग ऑफ द सेल। ड्रिंकिंग ऑफ द सेल का ये मतलब है कि कोई अगर सब्सटेंस है, कोई यूजफुल न्यूट्रिएंट है, वो लिक्विड फॉर्म में है, तो अगर सेल उसको इनगल्फ कर रहा है तो उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है। इसके बाद हमारे पास जो मेन रोल है सेल मेम्ब्रेन का वो यही है कि क्योंकि उसमें लिपिड बायलेयर की कंसनट्रेशन जो है 20 to 40%, तो इससे क्या होता है कि जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं और अदर पोलर सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जो वाटर सॉल्युबल हैं, आयनिक सब्सटेंसेस हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन उनको अलाउ नहीं करती कि वो बाहर की तरफ निकलें। यानी अगर वो उनकी मूवमेंट बाहर की तरफ होगी तो सेल की डेथ हो सकती है। तो तो जो लिपिड्स है बेसिकली उनका काम ही है कि वो जो पोलर सब्सटेंसेस हैं साइटोप्लाज्म में उनको बाहर नहीं निकलने देता। अगर अगर इस तरह होता कि लिपिड्स लिपिड्स ना होते, हमारे पास सिर्फ प्रोटीन की लेयर्स होती, तो सेल से सारे जो कुछ यूजफुल कॉम्पोनेंट्स हैं वो बाहर चले जाते, सेल की डेथ हो जाती और इस तरह ऑर्गेनिज्म की भी डेथ हो सकती है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास अलग दूसरे फंक्शन जो हैं सेल मेम्ब्रेन के वो ये हैं कि वो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस अक्रॉस द सेल टू अपटेन न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीट वेस्ट, सूटेबल पीएच, आयन कंसंट्रेशन, आयन ग्रेडियंट्स फॉर नर्वस मस्कुलर एक्टिविटी। तो बेसिकली ये सारे फंक्शन जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के हैं। और जो हमारे पास डाइवर्सिटी है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की वजह से ही आती है, क्योंकि अगर ये हमारे पास स्पेसिफिक अमाउंट में ना हो, अगर इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो जाए, तो सेल की जो सारे फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं और जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो दोनों बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो सकती है। तो ये सब सारा फंक्शन था हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का।